वादा और मुश्किल अल्फाज की वजाहत। इन्नल्लज़ीन जाऊ, जाऊ जो है इसका रूट वर्ड है जीम हमजा या, और इसके मानी क्या होते हैं? आना। और आप देखें कि जाऊ बिल इफ्की, इफ्क से पहले बा आया हुआ है ना, बा की प्रेपोजिशन है, हर्फे जार है, और जब बा आ जाए जा बा तो मानी क्या होते हैं? लाना। अगर अजा आ जाए तो भी लाना, लेकिन अगर जा के साथ बा की प्रेपोजिशन है तो मानी क्या बन गए? लाना। तो यहाँ पे लफ्जी तर्जमा जब मैंने आपको लिखाया तो मैंने आना नहीं लिखाया, बल्कि क्या लिखाया? लाना। तो मैं समझ रही थी कि आपको ये बात जो है याद होगी, आपने सूरत अल बकरा में भी इस तरह का जो था पढ़ा था, अता आना और अता बा के साथ क्या है के लाना। इफ्क इसका रूट क्या है? हमजा फा काफ। और ये जो लफ्ज है इफ्क, ये इसके लफ्जी मानी होते हैं फेरना। हर उस चीज को कहते हैं जो अपने सही रुख से फेर दी गई हो। इन हवाओं को भी कहते हैं जो अपना असली रुख छोड़ दें। इसी तरह मुतफिकात आप पढ़ चुकी है ना, वल मुतफिकात बिल खातिया, और उलटने वाली बस्तियों ने खताएं की थी, गुनाहों के काम किए थे। तो वल मुतफिकात कौन सी बस्तियां मुराद है? जिन्होंने अल्लाह की नाफरमानियां की थी, खातिया यानी खताएं करने वाली थी, और फिर उनको जो है उनके अंदर बसने वाले इंसानों समेत जो था वो उलट दिया गया। तो वल मुतफिकात और इफ्क, इन सब के मानी क्या है? वो जो अपने असली रुख से जो है फेर दी गई हो चीज। हवा को भी कहते हैं, बस्तियों को भी कहते हैं, इसके अलावा जो है वो बात को भी कहते हैं, किसी इंसान को भी कहा जाता है कि फन्ना तू फकून, फिर तुम कहां बह के जाते हो? तुम्हारा असल काम तो क्या था कि तुम हक को पहचानते, लेकिन तुम जो है वो क्या कर रहे हो? तुम बह के जा रहे हो। तो इफ का इस्तेमाल जो है वो अकीदे के लिए भी होता है कि जो अकीदा कोई फेर ले अपना, असल अकीदा तो ये ना ईमान लाना, लेकिन कोई बरगश्ता हो जाए, हकीकत जो है वो उससे फिर जाए, तो उसके लिए इफ का लफ्ज जो है वो बोला जाता है। लिकुल्ले अफाकिन असीम, अफाक इसका मतलब क्या है कि हर झूठे गुनाहगार के लिए है ना, अफाक गोया के झूठा है, हक से वो फिरा हुआ है। तो इस तरह कुरान में ये लफ्ज जो है वो काफी जो है वो इस्तेमाल होता है, और यहां पे भी इस्तेमाल हुआ है उन लोगों के लिए जो के झूठ घड़ कर लाए हैं। इफ उन्होंने जो है वो बहतान घड़ा। उस बा आइन स्वाद बा, और आपने रूट तो इसका माशाल्लाह बिल्कुल ठीक बताया है, इसके मानी क्या है? ठीक है, ग्रोह को कहते हैं, जमात को कहते हैं, लेकिन आप बात शुरू कहां से करेंगे? जहां से हमारी इस बहन ने शुरू किया, आइन स्वाद बा। हाँ, असल में ये मसल को कहते हैं। हाँ, ये लफ्ज जो है आइन स्वाद बा, बदन के पट्टे, बदन के पट्ठों को कहते हैं, और मसल्स क्या करते हैं? आसाब, जैसे उर्दू में आप आसाब भी बोलती हैं, तो आसाब क्या करते हैं? ये जोड़ों को पकड़े हुए होते हैं, पट्ठे जो जोड़ों को थामे हुए होते हैं। लहमुन असिब, बहुत पट्ठों वाला गोश्त। तो इसी तरह लोहे को भी कहते हैं अलमासूब, जैसे पट्ठे मजबूत होते हैं ना, बंधे हुए होते हैं, इसी तरह लोहा भी बड़ा मजबूत होता है। तो गोया के अस्ब का लफ्ज जो है ये मजबूती के लिए इस्तेमाल होता है, सख्ती के लिए इस्तेमाल होता है। आपने पढ़ा था ना यौमुन असीब, आज का दिन बड़ा सख्त दिन है, एक कौम पर जब है, जब मुश्किल दिन आ गया, तो कुरान में आपने उसके लिए जो था ये पढ़ा था। तो इसी से ये लफ्ज उधार के मानी लेकर अल उसबा उस जमात के लिए बोला जाता है जो के ताकतवर जमात हो, मजबूत लोगों की जमात हो, ताकतवर और मजबूत लोगों की जमात। जिसके अफराद एक दूसरे के हामी और मददगार हों। ठीक है, जैसे नहनु उस्बा, आपने कब पढ़ा था नहनु उस्बा? बिल्कुल सही, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जो है वो आपने कहानी पढ़ी थी सूरत यूसुफ में। قالوا لئن اكله الذئب ونحن عصبة انا اذا لخاسرون। अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने क्या कहा था कि कहने लगे अगर हमारी मौजूदगी में मतलब इसको कोई आके खा जाए या नुकसान पहुंचाए, हम एक ताकतवर जमात है, अगर उसे भेड़िया खा गया तो हम नुकसान में पड़ गए, तो उस्बा ताकतवर जमात के लिए। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के जो भाई थे उन्होंने कहा हम तो बड़े मजबूत पट्ठों वाले हैं, बड़े मजबूत हैं, ताकतवर हैं। तो यहां पे भी जो ये लफ्ज है इसके मानी क्या है कि उस बतुम मिनकुम, तुम्हारे अंदर ही का एक मजबूत ताकतवर टोला है। ला तासबूहू, तासबूहू इसका रूट क्या है? खासीन बा। और ये बहुत पहले आपने ये लफ्ज जो था वो पढ़ा था, और आपको पता है हासीन बा जो है आइन कलमे की हरकत के फर्क से तीन मुख्तलिफ मानी देता है। ये बात मैंने पहले भी बताई थी, हासीन बा आइन कलमा, आपको बताया था ना फा आइन लाम। आप किसी भी वर्ब को देखना चाहती हैं तो एक नाम दे दिया गया है उसको फा आइन लाम कहते हैं ना, जैसे जो है वो दराबा, तो रा जो है वो आइन कलमा है। इसी तरह आप कहती हैं नसारा, दरमियान वाला स्वाद जो है ये आइन कलमा है क्योंकि फा आइन लाम। तो आइन कलमा मसलन हसबा या सुबू हसबन हिसाबन हुसबानन, इसका मतलब होता है गिनना शुमार करना हिसाब करना। तो आइन कलमा क्या है? हसबा या सुबू। दूसरा है हसीबा। अब आप देखें कि माजी में आइन कलमा में सीन आइन कलमा है, सीन के नीचे जेर है हसीबा, और यह सेबू और यह सबू दोनों तरह आता है, सीन आइन कलमा पर जबर भी आती है जेर भी आती है, यह सेबू यह सबू और हिसाबन। हसीबा यह सबू यह सेबू हिसबानन और महसीबा गुमान करने के मानी में आता है। फिर इसी तरह हसुबा या सुबू और हसबन और हसाबन, ये किसी का बुजुर्ग होना काफी होना, साहिबे हसब नसब होना। अच्छा चलें, अगर आयन कलमे वाली बात आपको समझ आई तो बड़ी अच्छी बात है, अगर नहीं आई तो आप उसको क्रॉस कर दें, आप समझे आपने कोई ऐसी बात नहीं सुनी जो आपको समझ में नहीं आई, क्योंकि आप परेशान ना हो। अब ये बात याद रखें कि आयन हा सीन बा ये लफ्ज तीन मानी देता है, बस इतना याद रखें, हा सीन बा अराब के फर्क से ये लफ्ज तीन मानी देता है। और तीन मानी क्यों देता है कि जो सीन है ना कभी इस पर इसके माजी पर कभी जबर होती है कभी जेर होती है कभी पेश होती है, और इसी तरह इसके मजारे पर कभी जेर जबर पेश होती है। अगर आपको माजी मजारे की सीन जबर जेर पेश की बात नहीं भी समझ आई तो फिर वही आसान सी बात कि हसबा तीन मुख्तलिफ मानी देता है, एक इसके मानी है गिनना शुमार करना, दूसरे इसके मानी है गुमान करना, तीसरे इसके मानी है साहिब हसबो नसब और बुजुर्ग होना। ये तो याद रहेगा ना, चलो अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहरहाल यहाँ पे क्या है कि ला तासबूहू इसके मानी क्या है कि तुम ना समझो, तुम गुमान ना करो। फिर है शरन, शरन का ऑपोजिट क्या है इस आयत में? खैरन। इसकी खास बात क्या है? ज़वील अज़दाद में से है, शाबाश। ये आप देखें कि नहीं, हाँ मुतज़ाद तो है ही, खैर और शर ज़वील अज़दाद नहीं है यहाँ पे, हाँ ये कोई है चीज है ना, वो क्या चीज है? इसम तफ़ज़ील है। शरन जो है इसका ऑपोजिट खैरन है, और ये ज़वील अज़दाद में से नहीं है बल्कि ये इसम तफ़ज़ील है। इसम तफ़ज़ील क्या होता है? सुपरलेटिव डिग्री। कोई भी चीज होती है, एक है कि बेहतर है, अच्छी है और बहुत अच्छी है, है ना? तो आप क्या कहते हैं इंग्लिश में भी अच्छी और बेहतर और हाँ, तो सबसे पहले क्या कहते हैं? गुड. फिर क्या कहते हैं? बेटर. नंबर तीन क्या कहते हैं? बेस्ट. तो यहाँ पे ये जो शरण है और खैरन है, ये यानी आखिरी सुपरलेटिव डिग्री है. खैरन बेस्ट, द बेस्ट. और इसी तरह खैर जो है यहाँ पे क्या है कि द बेस्ट, और शरण भी सबसे बुरा. तो आप एक बात याद रखें, शरण और खैरन, शरण और खैरन कुरान में या कहीं भी जब भी इस्तेमाल होता है, ये आखिरी है डिग्री, सुपरलेटिव है, ठीक है? थर्ड उसमें इस्तेमाल हुआ है. इसके बाद है इक्तसबा. इक्तसबा किस मानी में इस्तेमाल होता है? हाँ, काफ सीन बा, कमाना. कमाना जो है इसके मानी में ये इस्तेमाल होता है. और आप देखें कि इंसान जो है जो कमाई करता है तो किस लिए कमाई करता है? वो चाहता है कि कुछ नफा हासिल करे, कुछ फायदा हासिल करे. अच्छा, कमाने के लिए भी कुरान में चार लफ्ज है, अमिला, कसबा, इक्तसबा, इक्तरफा. इक्तरफा तो अमल तो आपको आता ही है ना, हर वो काम जो इंसान इरादतन करता है, कमाई करना उसका एक अमल है, है ना? तो अमल करना. या मलून फिल बहर अम्मा सफीनतु फकानत लि मसाकीनी, अम्मा सफीनतु फकानत लि मसाकीना, या मलून फिल बहर. वो जो कश्ती थी वो गरीब लोगों की थी जो दरिया में काम करते थे, अमल करते थे, ठीक है? ये भी एक कमाई के लिए इस्तेमाल हो गया. और दूसरा है कसबा. कसबा कमाई करना. और ये लफ्ज जो है ये कौन सी कमाई के लिए इस्तेमाल होता है? जो फायदा हासिल करने के लिए हो, वो फायदा अपने लिए हो या दूसरों के लिए हो. अच्छा, वो फायदा हलाल काम के लिए भी हो सकता है, हराम काम के लिए भी हो सकता है. यानी कसब जो इंसान फायदा चाह रहा है, अब ये भी हो सकता है फायदा वो अच्छा चाहे या बुरा चाहे, है ना? इसी तरह हलाल काम के लिए हो या हराम के लिए हो. तो कसब, कसबा कमाई करना, अच्छी और बुरी दोनों तरह के लिए है. और इक्तसबा क्या है? वो काम जिसमें इंसान सिर्फ अपना फायदा मद्देनजर रखे. एक राय तो ये है इसके बारे में, वो काम जिसके लिए इंसान सिर्फ अपना फायदा जो है वो मद्देनजर रखे. लेकिन इसके बारे में एक राय और भी है, वो ये है कि वो ये कहते हैं कि कसबा जो है फायदे के लिए भी है, इक्तसबा फायदे के लिए भी है, नुकसान के लिए भी है. लेकिन इक्तसाब से मुराद वो ये कहते हैं कि ये सिर्फ नुकसान के लिए है. जैसे गुनाह कोई कमा ले, ऐसे अमाल जो अमाल हसना नहीं है, सैया है, तो उसके लिए ये इस्तेमाल होता है. जैसे कुरान में आता है सूरत अल बकरा आयत 286 में आप पढ़ चुकी हैं, लहा मा कसबत, इंसान के लिए है जो उसने अच्छी कमाई की, वह अलैहा और उस पर है, मक तसबत जो उसने बुरी कमाई की. तो बाज वो कहते हैं कि ये सिर्फ अच्छे और बुरे दोनों के लिए नहीं आता, बल्कि बुरी बुरे अमल के लिए आता है. अब आप देखें यहाँ पे भी इक्तसबा मिनल इस्म, गुनाह के साथ कमाई आई ना, तो उसने कमाई क्या की? गुनाह की कमाई की, तो बुरे अमल के लिए. तो गोया के इक्तसबा कमाई करना ये अच्छे बुरे दोनों के लिए आ तो सकता है, लेकिन काफी जगह पर कुरान में ये बुरे अमल के लिए जो है वो इस्तेमाल किया गया है. अच्छा, इसके बाद है इस्म. इस्म गुनाह के लिए आता है ना, हाँ. और आप जो हैं ये पढ़ भी चुकी हैं कि गुनाह के लिए क्या मानिए इसके? सही, ऐसा ऐसा कोई शख्स जो जिसकी तबीयत हर वक्त गुनाह करने के लिए जो है वो आमादा रहे. और अरबी जबान में ऐसी ऊंटनी को कहते हैं नाकतुन आसिमा, जो तेज चल सकती हो फिर भी जानबूझकर जो है ना वो आहिस्ता चले. आपको पता चल रहा होता है ना, बाजू का बच्चों को आप काम कहती हैं, वो तेज कर सकते हैं, जल्दी कर सकते हैं, जानबूझकर आहिस्ता कर रहे होते हैं. तो इंसान जब गुनाह करता है ना, आसिम इसका मतलब क्या है? वो ठीक काम कर सकता है, नेक बन सकता है, फिर भी वो जो है ना गुनाहों का काम करता है। तो इस्म जो है इसके मानी क्या है? गुनाह के। अब देखें कि जिस गोया के इस्म गुनाह, वैसे तो आप खता भी आता है, खता क्या होता है? भूल चूक, भूल चूक। अब जानबूझकर नहीं कर किया जा रहा, भूल चूक है। मुजरिम क्या है? बड़े गुनाह को कहते हैं। इसी तरह फासिक, ऐसा गुनाहगार जो दीन की हदों से निकल निकल जाता हो, फसाका। और फाजिर, जो ढीठ हो, गुनाह को गुनाह ही ना समझता हो, फजरा। अब देखे फजर हो गई, अब इसका मतलब क्या है? अंधेरे को फाड़ कर रोशनी नमुदार हुई ना, जैसे हदों से निकल निकल जो है वो जाना। बहरहाल आप ये सारे लफ्ज पहले भी पढ़ चुकी हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है कि गुनाह समेटा और किबराहू काबारा। और आपको पता है बड़े के लिए आता है अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, तो किब्र जो है बड़ा हिस्सा। अजीम का रूट क्या है? आयन जोयमीन। और मानी क्या है इसके? यानी हड्डी के लिए आता है। और अरबों के हाँ जो है वो ये क्या था उनके पास, जैसे ऊंट था, बड़े बड़े जानवर जैसे ऊंट है, तो गाय है, तो उसकी बड़ी बड़ी हड्डियां। तो अजीम का लफ्ज बड़े के लिए, एक बड़ी चीज का तस्वुर देने के लिए बोला जाने लगा। वैसे कहते हैं हड्डी को है, जब मैंने पहली दफा जब ये मुझे पता चला कि ये हड्डी को कहते हैं, क्योंकि लफ्ज़ी तर्जमा पहले याद करते थे, रूट वर्ड डिक्शनरी ये चीजें जब नहीं समझती, मुझे बड़ी हैरत हुई कि अच्छा हड्डी और इसके मानी बड़ी के हैं, वैसे बड़े के हैं। तो अल्लाह ताला ने अरब अरबों को जो आम जिंदगी में जो चीजें वो इस्तेमाल करते थे, उनके बारे में जो उनका तसव्वुर था, तो उसी से मिसालें देकर चीजें समझाई हैं, शायद कि इनको बात समझ में आ जाए। ये लौला जो है ना, इसको तो आप पक्का याद कर लें, लौला, फिर ऐसा क्यों ना हुआ। लौ वैसे किसके लिए आता है? काश, काश। काश का मतलब क्या होता है? हसरत। हाँ, इंसान जो है वो किसी चीज के लिए हसरत करता है और वो उस चीज को पाना चाहता है, उसको पा नहीं सकता। काश मैं जवान होती। जब जवानी गुजर जाए और बुढ़ापे की दहलीज पर इंसान कदम रख चुके, तो इंसान कहता है काश के मैं जवान होती। एक मर्द कहने लगा, काश के मैंने तलाक न दी होती, काश के मैंने वो जुमले न बोले होते। एक औरत कहने लगी एक दफा, काश के मैं अपनी जबान से बहुत बोला ना करती, क्योंकि जबान बड़ी स्लिप होती है। काश जबान से निकले हुए कलमात, तीर से, कमान से निकला हुआ तीर, और मतलब जो चीज हाथ से निकल जाती है फिर वो कभी पास इंसान के वापस नहीं आती, इसको कहते हैं लौ, काश। काश तो बड़ा हसरत वाली बात है। तो क्या है लौला? ऐसा क्यों ना हुआ, है ना? लौ अगर, काश ऐसा, ला नहीं, ऐसा क्यों ना हुआ। जन, जन जो है इसके मतलब क्या है? ये लफ्ज जो है ये किसके लिए बोला जाता है? गुमान के लिए बोला जाता है। आपको कुछ याद है, मैंने कुछ और भी कहा था आपको? गुमान अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, लेकिन कैसे पता चलेगा ये अच्छा है कि बुरा? असल में जन जो है ये इस्तेमाल होता है गुमान करना, ख्याल करना, और किसी चीज की अलामतों से जो नतीजा हासिल होता है उसे जन कहते हैं। अगर अलामात से जो भी नतीजा मिलता है तो उसको क्या कहते हैं? जन कहते हैं। अगर ये अलामतें कवी हों, अलामत किसे कहते हैं? निशानी को। अगर अलामतें कवी हों, अगर अलामतें जो हैं वो कवी हो, तो जन जो है ये इल्म का दर्जा हासिल कर लेता है। जन गुमान है ना, अलामतें कवी हैं तो वो इल्म का दर्जा हासिल करता है, यकीन का दर्जा हासिल करता है। मगर जब वो कमजोर हो तो वहम की हद से आगे नहीं बढ़ता ना, ठीक है ना। फिर मुफस्सरीन जो है वो क्या कहते हैं कि इल्म का जब दर्जा ये हासिल करता है तो इस सूरत में क्या आता है? अन्ना या अन्न, अन्ना या अन्न जो है वो आता है, तो इसके बाद अन्न या अन्ना इस्तेमाल होता है। जब वो जन कमजोर होता है तो वहम के दर्जे से आगे नहीं बढ़ता, फिर इसके साथ सिर्फ अन्न आता है। यानी अन्न अन्ना आता है या अन्न आता है, ठीक है। हाँ, अब आप देखें, अल्लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाकू रब्बिहिम, यज़ुन्नूना जो है इसके साथ क्या आ रहा है, अन्ना जो है वो आ रहा है ना। तो जब यज़ुन्नूना के साथ अन्ना आएगा तो मानी क्या हो जाएंगे, यकीन के, इल्म के दर्जे के हो जाएंगे, ठीक है। और इसी तरह आप देखें कि अगर जन्ना का जो लफ्ज है ये वहम और शक की हद तक है तो फिर क्या होता है, हाँ वो कहते हैं, यानी बाज कहते हैं कि बस अन आएगा, सिर्फ अन इस्तेमाल होता है, तो ये शक के मानी जो है वो देता है। हाँ, जैसे आप देखें, इन जन्नु इल्ला जन्ना, हम तो इसको समझते हैं नहीं मगर गुमान। इन जन्नु इल्ला जन्ना, तो इन आया ना जन से पहले, तो पहले आया तो मानी क्या है, यहाँ पे गुमान के हैं, तो कभी ये यकीन के मानी देता है, कभी ये गुमान के मानी देता है। तो बाज लोग जो है वो ये कहते हैं कि आप इसको फिर आप यूं याद रख सकती हैं कि जन्ना का लफ्ज जो है यकीन के मानी भी देता है, इन के मानी भी देता है, तो इसके साथ अन्ना आता है, और अगर अन आए तो मानी वहम के पैदा हो जाते हैं, शक के पैदा हो जाते हैं। कभी कभी इसे उलट भी होता है कि जन के साथ अन्ना आता है तो मानी यकीन के हैं, इन के हैं, और दूसरा ये कि इन्ना आए या इन आए या अन आए तो फिर जो है वो वहम और शक के मानी जो है वो पैदा हो जाते हैं। तो बहरहाल असल बात यह है कि आपने ये याद रखना है कि अन्ना की वजह से या इन या अन की वजह से मानी में कुछ तब्दीली जो है वो पैदा हुई। फिर इसके बाद दोबारा आ गया यहाँ पे खैरन, तो खैरन जो है इसके मानी क्या है, अभी बताया था ना, इसम तफ़ज़ील है और बहुत अच्छी चीज है। मुबीन की एक खास बात मैंने आपको बताई थी, मुबीन कहते हैं किसको है, खुला, इसका रूप क्या है, बायानून। इसके अंदर खास एक बात, लाजिम और मुतद्दी, लाजिम और मुतद्दी का मतलब क्या है, हाँ लाजिम और मुतद्दी जो है इसमें इसका मतलब क्या है कि फेल का असर जो है वो फाइल से गुजरकर दूसरे तक भी पहुंचे। फाइल कौन होता है, काम करने वाला ना, तो जैसे कोई चीज आप पर जो वाजे है, आप पर वाजे है इस तरह से कि दूसरे पर भी वो वाजे आपने कर दी, यानी फेल का असर फाइल से गुजर कर दूसरे तक भी पहुंच रहा है ना। तो यहां पे सिर्फ लाजिम नहीं है बल्कि क्या है, मुतद्दी भी है। मुतद्दी आप देखिए, बीमारी एक लगती है, एक को लगती है साथ ही दूसरे को भी लग जाती है, अब उससे भी बात याद रख सकती हैं। तो मुबीन जो है ये लाजिम और मुतद्दी है। इसके मानी क्या है कि ये कुरान मजीद खुद वाजे है और दूसरों को भी वाजे कर देता है ना, चीज को वाजे कर देता है, क्लियर है ये। तो यहाँ पे मुबीन जो है ये सरी, जब किसी पे कोई एक बोहतान लगाता है दूसरों को भी उसमें मुब्तला कर दे। तो बहरहाल आगे है, भी अरबाती शुहदा, चार गवाह। मैंने आपको बहुत शुरू में एक बात बताई थी कि गिनती जो है ना इसको अदद मादूद कहते हैं, अरबाती शुहदा अदद मादूद है। गिनती का क्या होता है कि तीन से लेकर नौ तक, एक दो, तो एक दो में क्या होता है कि आप जैसे कोई चीज गिन रही हैं तो गिनती भी मुजक्कर होती है, जिस चीज को गिनती है वो भी मुजक्कर होता है। अगर गिनती मुअन्नस है तो जिसको गिन रही है वो भी मुअन्नस होता है, एक और दो में। हाजा कलमुन, ठीक है, دونوں ہی مذکر آپ کو نظر آ رہے ہیں. اسی طرح آپ جو ہے کوئی مؤنث آپ چیز جو ہے اس کا استعمال کرتی ہیں اور آپ کہتی ہیں کہ حاضہ قلم اگر ہے کتاب کیا ہے عربی زبان میں, ذالک الکتاب کیا ہے, یہ مذکر ہے, تلک الکتاب تو نہیں آئی ہے نا, تو ذالک الکتاب یہ چیز کیا ہے, مذکر ہے. اسی طرح جو ہے وہ آپ یہ کہتی ہیں حاضہ بابن یہ دروازہ ہے نا, اور مؤنث کے لیے جو ہے وہ بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں, اور مؤنث کی علامتیں بھی میں نے آپ کو بتائی تھی کہ اس کے آخر میں تا ہوتی ہے. آپ کہتی ہیں حاضہ ساعتن یہ گھڑی ہے نا, تلکا ساعتن یہ گھڑی ہے. تو واحد اور تثنیہ ایک اور دو میں مذکر اور یعنی جو چیز آپ گن رہے ہیں اور جو گنتی ہے وہ دونوں ایک دوسرے کو فالو کرتے ہیں. عدد اور معدود دونوں جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں, اگر جس کو آپ گن رہی ہیں وہ مذکر ہے تو گنتی بھی مذکر ہوگی, جس کو گن رہی ہیں وہ مؤنث ہے تو گنتی بھی مؤنث ہوگی. لیکن تین سے لے کر نو تک عدد اور معدود ایک دوسرے کے الٹ آتے ہیں, تین سے لے کر نو تک عدد اور معدود ایک دوسرے کے الٹ آتے ہیں. اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی تو بڑی اچھی بات ہے, اگر نہیں بھی آئی تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. بہرحال گرامر ہمارا ٹاپک تو نہیں ہے لیکن لفظی ترجمہ تو یاد کرنا ہے. اب یہاں پہ دیکھیں ارباتی شہداء ہے نا, تو ارباتی گنتی آپ کو مؤنث نظر آ رہی ہے اور شہداء کیا ہے, مذکر نظر آ رہا ہے نا, شہید کی جمع شہداء ہوتا ہے نا, یہ مذکر ہے. تو یاد کیوں میں یہ ہوا ایسا, ارباتی کیا ہے, چار ہے, اور میں نے ابھی آپ کو کیا قاعدہ بتایا تھا, تین سے نو تک عدد معدود ایک دوسرے کے الٹ آتے ہیں. آپ کو نہیں بھی سمجھ آئی نا, موٹا سا جہاں آپ نوٹس لیتی ہیں موٹا سی یہ بات لکھ لیں. اچھا جی آگے چلتے ہیں, اور لفظ ہے آیت نمبر 14 میں افتتم, فا یا دعاد فیض, بہنا چشمے کا پھوٹنا, فائدہ اٹھانا, فیض حاصل کرنا, اس کا تو بڑا فیض ہے بھائی, میں نے اس سے بڑا فیض پایا. آپ اردو میں بھی یہ بولتی ہیں ہے نا, فیض یاب ہونا, ٹھیک ہے, کیا مطلب ہے, کوئی چیز بہہ رہی ہے, چشمہ پھوٹ رہا ہے تو لوگ اسے فائدہ اٹھا رہے ہیں نا. تو یہاں پہ افتتم کا مطلب کیا ہے کہ تم نے فائدہ لیا, تم اس کو لیتے چلے گئے. اس تلقونہ ہو, تلقونہ کیا روٹ ہے اس کا, لام قاف یا, اور معنی کیا ہے, ملنا. اور آپ دیکھیں کہ یہ لفظ ملاقات کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, لقو پیچھے آپ نے پڑھا تھا نا, ہاں ہاں, تو یہاں پہ کیا ہے, تلقو نہ ہو, زبان در زبان لینا, ایک زبان سے دوسری زبان کا اس کو لیتے چلے جانا, تلقو نہ ہو کہ تم اس کو لیتے جا رہے تھے. بیل سے ناتے کم کیا, کون لے رہا تھا, تمہاری زبانیں لیتی جا رہی تھی, کیونکہ قاف پر شد بھی ہے. ال سے ناتے کم کا روح کیا ہے, لام سین نون, اور لسان واحد ہے, السنا اس کی جمع ہے, زبان کو کہتے ہیں, یہ زبان جو ہمارے منہ کے اندر ہے, اور ویسے بھی جو لینگویجز ہیں جو بولی جاتی ہیں اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. تقولونا کا روٹ کیا ہے, قاف ولام شابش بولنا, قول بی افواہکم فا وہا شابش, جس کو یہ آتا ہے تو بڑی بات ہے, فا وہا, اور اس کے معنی کیا ہوتے ہیں, ہاں منہ کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. جیسے آپ دیکھیں وجھن پورے چہرے کو کہتے ہیں نا, اور فم یہ والا منہ کا حصہ, فم اور افواہ یہ منہ جس سے ہماری باتیں نکلتی ہیں نا. کیا فرق ہوتا ہے ماؤتھ میں اور فیس میں, فیس پورا کا پورا ہوتا ہے, تو اسی طرح جو ہے وہ ماؤتھ ہے اور فیس ہے, ماؤتھ جو آپ بول رہی ہوتی ہیں, تو ماؤتھ ہے یہ, بھی افواہکم تمہاری منہ جو تھے. حینا ہا و نون आसान आसान नरम उसके लिए बोला जाता है। फिर आयत 16 है बोहतानुन बाहा ता, इसके मानी है यकदम हैरान होने की वजह से हवास खो देना, हैरान होना। ऐसा हैरान हुए कि हवास ही जो है वो खो दिए ना। और ऐसा होता है कि बाज़ औक़ात किसी भी खुशी या गम की वजह से आप इतने हैरान होते हैं, या कोई सवाल आपसे पूछ लिया जाए या हमसे पूछ लिया जाए हमें जवाब ना आए, तो क्या होता है कि इंसान बहुत ज्यादा जो है वो इतना मबहूत हो जाता है, इतना हैरान होता है कि फिर उसको उसका कोई जवाब जो है वो बन नहीं पड़ता, बिल्कुल ही हैरत के अंदर जो है वो डूब जाता है। आपको कोई मिसाल याद है कुरान में, ये एक आपने पीछे आपने पढ़ा था किसमें? शाबाश, बिल्कुल आपने माशाल्लाह बहुत अच्छी जो है वो मिसाल दी है। और ये मिसाल है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम में और नमरूद में जब हुआ था मनाजरा, तो वो ये कहता था ना कि मैं भी खुदा हूं, तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनसे ये कहा था, फिरौन से कहा था कि अगर तू खुदा है तो जरा सूरज को जो है वो मशरिक से निकलता है ना, तू जरा उसको जो है वो मगरिब से निकाल कर तो दिखा। फबुहित अल्लजी कफर, ये सुनकर वो मबहूत हो गया। ये सूरत अल बकरा आयत 258। फिर इसके बाद है, और भी आपने इसको कई दफा कुरान में पढ़ा होगा, अगला अहम लफ्ज है आयत नंबर 19 में तशीआ, शीन या आइन मशहूर करना, ग्रो के लिए भी आता है, शियातुन ग्रो के लिए भी आता है, और इसके अलावा इसके मानी होते हैं आप कहती हैं उसकी उसने उसकी बड़ी तशी कर दी, मशहूर करना। अशात जो है ना वो भी इसी से है, अशात आपको वहां पे या नजर नहीं आ रही, अशात में या हर तेलत है गिर चुका है। खैर आयत नंबर 20 में है रऊफुन, क्या रूट है? रा हमज़ा फा, मानी क्या है इसके?
नरम मेहरबान।
जरा सही से बोला करें, पूरा पूरा बोला करें, माशाल्लाह आपने सही बोला कि किसी से ऐसे मोहब्बत होना कि उसकी तकलीफ देखकर दिल जो है वो उस पर आप तरस खाएं, दिल आपका भर आए। राफत ये लफ्ज है, रऊफ खुतुवात खा तोए वो, और दो कदमों के आप चल रही होती है ना तो आपके दो पाओ के दरमियान जो फासला होता है जो मट्टी होती है ना उसको कहते हैं खा तोए वो, दो कदमों के दरमियान जो जगह है। आप एक कदम उठाती है ना, आप देखें एक पाओ आपका एक जगह होता है दूसरा दूसरी जगह होता है, बीच की जो चीज जगह है ना उसके लिए ये लफ्ज इस्तेमाल होता है, उसको क्या कहते हैं? कदमों के निशान या नक्शे कदम। और फाहाशीन बिलफाशाई, फाहाशीन जो है वैसे तो ये लफ्ज जो है ये इस्तेमाल होता है बेहयाई के लिए, कुरान ने बदकारी को फाहिशा कहा है, और यहाँ पे जो है वो बदकारी की एक झूठी खबर की अशात जो है ना, एक झूठी खबर अगर कोई उसकी अशात करे तो अल्लाह ताला ने बदकारी की अशात को भी फाहिश कहा है। एक होता है बदकारी करना, एक होता है बदकारी की अशात करना, उसको फैलाना, उसको भी कुरान जो है वो फोहश कह के पुकारता है। तो आप सोच लें कि कितनी खास बात है ना। और मा ज़का मिनकुम ज़ाकाफ या, क्या मानी है इसके? हाँ, ब्यूटीफाई करना, प्योरीफाई करना, संवारना, नशोनुमा देना, ये मानी देता है। और आयत नंबर 22 है 22, और इसमें लफ्ज है वला या तली, वला या तली, और इसका रूट है अलिफ लाम वो। एक तो ये कहते हैं कि इसका रूट है अलिफ लाम वो। अच्छा, अलिफ लाम वो जो है किसी काम में कोताही करना, किसी काम में कोताही करना, لا یعلونکم خبالا پڑھ چکی ہیں سورۃ آل عمران آیت 118. یہ لوگ تمہاری خرابی چاہنے میں کسی طرح کی کوتاہی نہیں کرتے، کوئی کمی نہیں کرتے، ہے نا؟ اسی طرح یہ لفظ جو ہے یہ قسم کھانے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. بھلا یا تلی اولو الفضل منکم، اور صاحب فضل تم میں سے کوتاہی نہ کریں، اور صاحب فضل تم میں سے جو ہے وہ کوتاہی کرنے کی قسم نہ کھائیں. ٹھیک ہے، تو کیا کہتے ہیں کہ اگر یہ لفظ ولا یا تلی جیسے ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ الوت جو ہے الف لام بو یہ باب افتعال سے ہے. باب افتعال کے معنی یہاں پہ کیا ہوں گے کہ اے لیتو، یا پھر یہ کہ ولا یا تلی یہ لفظ اگر باب افتعال سے آ جائے تو قسم کے معنی دیتا ہے. ویسے معنی کیا تھے؟ کمی کرنا، لیکن پھر حلف تو قسم کھانے کے معنی دیتا ہے کہ چونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قسم کھا لی تھی کہ آئندہ حضرت مستہ جو ہے ان کی کفالت نہیں کریں گے. مثلا آپ اس کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ایلاؤن اور علیتن اس قسم کو کہتے ہیں جس پر قسم کھانے والے کو تکلیف اور کوتاہی کا سامنا کرنا پڑے. ایلاد اسی سے ہے، اس قسم کو کہتے ہیں جو عورت کے ساتھ جماع پر اٹھائی جائے. کیا ہوتا ہے ایلا؟ کون سی قسم ہوتی ہے؟ ہاں، جس میں مرد جو ہے وہ قسم کھا لیتا ہے نا. تو ایلا جو ہے اس قسم کو کہتے ہیں جو عورت کے ساتھ جماع پر اٹھائی جائے. اس قسم کی کیفیت اور احکام کا بیان کرنا جو ہے اس کے ساتھ یہ مختص ہے. اور بہرحال تو ایک اس کا روٹ جو ہے وہ کیا بتایا جاتا ہے؟ الف لام واو. اچھا، دوسرا ایک اس کا روٹ جو ہے، یہ جو الف لام واو ہے یہ تو مفردات القرآن میں امام راغب اصفہانی نے بتایا. ایک اس کا روٹ جو ہے الف لام الف اللہ پھر علیہ، یہ بھی وہی معنی ہے، بس روٹ اس کا یہ بھی بتاتے ہیں. اور یہ روٹ جو ہے یہ مترادفات القرآن میں جو ہے وہ بتایا ہے عبد الرحمان کیلانی نے. بہرحال آپ کو کتابوں کے نام نہیں آتے یا مصنفین کے نام جو بھی جنہوں نے اس کو تالیف کیا کمپائل کیا نہیں بھی آتے، کوئی مسئلہ نہیں. الف لام واو کے معنی بھی کیا ہے کہ کسی کام کے کرنے میں کمی کرنا، کوتاہی کرنا، اور اس کے معنی ایسی قسم کھانا جس میں قسم کھانے والے کو جو ہے وہ نقصان پہنچے، تکلیف اور کوتاہی کا سامنا کرنا پڑے. اور اگر الف لام الف ہے تو بھی اس کا مطلب ہے کوئی اچھا کام نہ کرنے کی قسم کھانا. تو کہتے ہیں کہ یہ لفظ جو ہے الف لام الف اس کے اندر دو معنی پائے جاتے ہیں بنیادی طور پر، ایک ہے کام میں کوتاہی اور دیر کرنا، نمبر دو قسم کھانا. تو دونوں کے معنی ایک ہی ہوئے. ٹھیک ہے، تو بہرحال ولا یا تلی یہ آپ کے لیے ایک ایسا لفظ ہے جو کہ خاص طور پہ آپ اس کو یاد رکھیں تو بڑی بات ہے. پھر اس کے بعد ہے آیت نمبر 22 ہی میں اولو الفضل منکم کے بعد وساتی. وساتی کا روٹ کیا ہے؟ ماشاء اللہ، واسین عین، وسط، واسے، وسیع، ہے نا؟ اس کی فیملی کے لفظ آپ یاد رکھیں تو بات یاد رہے. تو کشادگی کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے. پھر ہے آیت نمبر 23 میں یرمونا، رامیم یا تیر مارنا، کسی پر تہمت لگانا، بہتان لگانا. تو یہ رمی کرنا جو ہے یہ مادی اور معنوی دونوں طرح سے استعمال کیا جاتا ہے. مادی لحاظ سے کیا ہے؟ حج کرنے والے جب جمرات کو، شیطانوں کو مارتے ہیں، یعنی پتھر اٹھا کے مارنا. اور معنوی لحاظ سے کیا ہے؟ اپنی زبان سے ہی کسی پر جو ہے، کسی کی عزت پر حملہ کرنا، اس پر جو ہے وہ تہمت لگانا. باقی آیت 26 ہے، خبیثاتو خابا سا، کس کو کہتے ہیں یہ؟ گندے کو. اور ناپاک کے لیے یہ لفظ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے، ردی کے لیے، گھٹیا کے لیے. طیب جو ہے یہی اس کا روٹ ہے، توئے یا با، اور اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ پاک، ستھرا، اچھا اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اولائی کا مبرہونا بارا حمزہ, اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک تو اس کے معنی پیدا کرنے بھی ہے باری ہے نا, ایک اس کے معنی ہوتے ہیں پاک کرنا, بیزار ہونا. ایک سورت جو ہے اس کا ایک نام اسی روح سے بھی بنتا ہے, بتا سکتی ہیں؟ شاباش. ہاں لیکن وہ صحیح نہیں نا جس میں شک ہو, صحیح تو وہی ہے برات من اللہ. تو سورت توبہ کا دوسرا نام سورت برات بھی ہے, تو اس میں جو ہے وہ شرک کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ نے برات کا اظہار کیا ہے نا. تو مبرہونا اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں, پاک ہے, دامن پاک ہے, بری ہیں.